अस्सलाम वालेकुम। हम अपना पिछला सेशन मोईज़ अहमद साहब के साथ कंटिन्यू करते चलते हैं और कैरेक्टर डेवलपमेंट के ऊपर। और मेरा पहला सवाल यह है कि सोसाइटी का कैरेक्टर डेवलपमेंट के ऊपर क्या रोल है?
जी यमान, सोसाइटी का बड़ा मेजर रोल है। जिस तरह हमने लास्ट टाइम ये बात की थी कि आप जिंदगी में जो आपके गिर्द सर्कल है उसको लाजमन इन्फ्लुएंस करते हैं, अच्छा नहीं तो बुरा करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से सोसाइटी से मुराद असल में अफराद का मजमूआ है ना, जो उनकी वैल्यूज़ होंगी जिस वक्त हम उनके अंदर पैदा होते और फिर उसके बाद परवान चढ़ते हैं, तो उन्हीं की वैल्यूज़ को पहले लेवल पे हम उन्हीं की वैल्यूज़ को अपने अंदर अडॉप्ट करते हैं। ठीक है जी, यानी जो वो ठीक कह रहे होते हैं उसको हम ठीक समझ रहे होते हैं, जो वो गलत कह रहे होते हैं उसको हम गलत समझ रहे होते हैं। इसके बाद इंसान की जैसे जैसे उसकी डेवलपमेंट होती है, इसको अगर आप पढ़ना चाहें तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंदर बड़े अच्छे अच्छे राइटर्स ने इस पर लिखा है, उसको ज़रूर देखें, उसका मुताला करें कि इंसान की जब डेवलपमेंट होती है तो असल में उसके अंदर क्रिटिकल रिफ्लेक्शन की एबिलिटी पैदा होती है। आप ज़्यादा कॉन्शियस होने लग पड़ते हैं, यू सी डिफरेंसेस अराउंड यू। यानी आपको पहले सिर्फ आपका घर था जो इन्फ्लुएंस कर रहा था, अब जैसे ही आप बड़े हुए और आप मोहल्ले में निकलना शुरू हुए, स्कूल जाना शुरू हुए, तो देन यू सी यू नोटिस डिफरेंसेस कि ये लोग तो और तरह से भी करते हैं मामला, यानी क्या वजह है कि ये इस तरह कर रहे हैं और हम इस तरह कर रहे हैं। तो इसके बाद आपका वो जो विजन है वो ब्रॉडर होता है। ठीक है जी, वो देखने के नतीजे में हम ये इसका तो इनकार बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि सोसाइटी जो है वो हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस रखती है। जो चीज़ हम करते हैं यानी एट अ चाइल्ड लेवल, वो हम इसके बारे में कॉन्शियस ही नहीं होते। जो इन्फ्लुएंस सोसाइटी का है उसी को अडॉप्ट करके हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। और देखिए ये इसमें कितनी इंटरेस्टिंग बात है, मुझसे लोग पूछते हैं कि हम अपने बच्चों में मज़हबी जो रुझानात हैं वो कैसे पैदा करें। तो जो मज़हब के ज़ाहरी रुझानात हैं ना, यानी मिसाल के तौर पर नमाज पढ़ना है, ये दिखती है, नमाज दिख रही है, लेकिन असल में इसके पीछे एक पूरे का पूरा फेथ मौजूद है। ये अभी बच्चे की वो स्टेज नहीं है कि वो फेथ को समझ सके। जो छोटा बच्चा है ना वो इसको इस तरह के एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को नहीं समझ सकता कि ये हम कैसे पहुंचे हैं अल्लाह ताला की ज़ात तक। फॉर इंस्टेंस मैं आप कैसे पहुंचे हैं, एज अ मैच्योरर माइंड हम सोचने समझने क्रिटिकली रिफ्लेक्ट करने की पोजिशन पर आए हैं तब ये हमारे अंदर पैदा होगी। लेकिन जो ट्रेडिशंस हैं, मिसाल के तौर पर हम जब मिलेंगे तो किसी को तो सबाहल खैर या गुड मॉर्निंग के बजाय अस्सलाम वालेकुम करते हैं। ठीक है जी, ये जो एस्पेक्ट है अस्सलाम वालेकुम करने का, ये एक ज़ाहरी एस्पेक्ट है। ठीक है, आपको इसका मतलब पता है या नहीं पता, ये अगर आप कर रहे हैं तो बच्चा ये करना शुरू कर देगा। आपको नमाज का मतलब पता है या नहीं पता, उसमें अज़कार क्या हो रहे हैं ये पता है या नहीं पता, वो पढ़ना शुरू कर देगा। ठीक है, वो बल्कि वो चाहेगा कि आपके साथ खड़ा हो जाए और यू नो वो प्रैक्टिस करे जो आप कर रहे हैं। ये सब कुछ होगा, ये वो इन्फ्लुएंस है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये सोसाइटी का इन्फ्लुएंस है जिसके अंदर बच्चा अच्छी या बुरी, यानी इसमें तो अभी बच्चे को ना ये पता है कि ये अच्छा अमल है, क्यों अच्छा है ये, मतलब ये क्या अच्छा है, इसमें क्या अच्छा है। ठीक है ना जी, तो बिल्कुल इसी तरह से यानी आपका आपकी सोसाइटी आपके ऊपर आपकी सोसाइटी का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन You reach a level of consciousness जिधर आप उसको question करने लग पड़ते हैं, and that is where your own development starts। और इसके बाद कई मरतबा ये होता है कि इंसान अपनी society की जो पैदा की हुई values हैं उनके बिल्कुल बरखिलाफ खड़ा हो जाता है, ये भी हो जाता है।
सर, हम दूसरों के इन्फ्लुएंस से खुद को कैसे निकाल सकते हैं? मतलब जैसे हम किसी के साथ रहते हैं और हम चाहते हैं कि मतलब हमें फील हो रहा है कि हमारा हम उस जैसे हो रहे हैं, तो हम खुद को वैसे उससे कैसे निकाल सकते हैं?
देखिए, हम इन्फ्लुएंस से नहीं निकाल सकते, हम उस इन्फ्लुएंस के बारे में कि ये हम जैसे अभी आपने बात फरमाई है कि हमको ये एहसास होता है कि हम इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, हम वैसे हो रहे हैं। और जाहिर है कि जब आप ये कह रहे हैं तो आप मैं आई अज्यूम कि आपकी मुराद ये है कि ऐसी चीज़ जो कि बहुत पसंदीदा नहीं है वो हमारे अंदर पैदा हो रही है। तो जैसे ही आप इसके बारे में, अब ये असल में क्या चीज़ है जो अपने आपने शेयर की है, ये कॉन्शियसनेस है, दैट यू बिकम कॉन्शियस दैट यू आर बीइंग इन्फ्लुएंस्ड इन अ नेगेटिव वे, ये हुआ है ना। जैसे ही ये हो गया अब अगली चीज़ शुरू होगी कि अब मैं इससे कैसे निकलूं, ठीक है। इससे मैं निकलने के लिए ज़ाहिर है कि ये मौका नहीं है, वरना एक पूरा कोर्स है जो हम करवाते हैं कि हाउ डू वी ट्राई टू डिवेलप इन आवर सेल्व्स दी एबिलिटी टू स्टैंड अगेंस्ट द टाइड, ठीक है जी। अपनी हैबिट्स प्राइमरीली, ये जो अभी बात यमान ने भी फरमाई, वो असल में ये होता है कि जो आप जिस सोसाइटी में पैदा होते हैं वो आपको इन्फ्लुएंस करती है, और फिर वो अमल आपकी हैबिट्स बनती जाती हैं। अब इन हैबिट्स को तोड़ना है आपने, और ये आपने जो बात की है ये उसमें पहला स्टेप है। आप पहले तो कॉन्शियस हो जाएं कि ये मेरे ऊपर अच्छा इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा। अगर कॉन्शियस ही नहीं है, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं, ये मुझे इसका बड़ा गुस्सा सा चढ़ जाया करता था कि आपने कभी नोटिस किया कि आप जिस रोड पे मर्जी जा रहे हो, देयर इज समबडी गोइंग द रॉन्ग वे, ये देखा कभी? मुझे इस पर बहुत गुस्सा चढ़ता था कि यार ये क्या प्रॉब्लम है यार, थोड़ा सा मतलब 40 लाख रुपए की गाड़ी खरीद ली है, ये 40 रुपए का पेट्रोल नहीं डलवाना कि वो ऊपर से होकर यू टर्न लेके आ जाओ, ठीक है, ये नहीं करना। सो बट व्हाट आई रियलाइज, एक दफा मेरी एक सेशन हो रहा था एक कॉरपोरेट सेक्टर में, और उसमें एक साहब से ये बात जब हुई कि हमें इस तरह से लॉ अबाइडिंग होना चाहिए, हमें हमारी क्वालिटीज में ये चीज़ आनी चाहिए, ये सब जब मैंने बात की, तो वो मुझे बाद में मिले और मुझे वो कहते हैं कि आफ्टर अबाउट अ मंथ मुझे मिले, कहते हैं कि आपने उस दिन ये बात फरमाई थी, मुझे ये कभी इस पर ख्याल ही नहीं आया कि गलत है। मैं अपनी कॉलोनी में जब जाता हूँ तो मेरे घर जाने का सही रास्ता ये है कि मैं ऊपर से चक्कर लगा के वापस आऊँ और यू टर्न लेके और फिर मेरा घर आता है, और मैं क्या करता हूँ कि जो उससे पहले ब्रेक आती है उसमें से निकाल के तो आई गो अबाउट 50-60 yards रॉन्ग साइड पे जाता हूँ। तो कहते हैं मुझे इसका कभी एहसास ही नहीं हुआ। यकीन करें ये जो आपने बात फरमाई है, दिस इज़ अ वेरी बिग स्टेप इन अंडरस्टैंडिंग दैट वी आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, बिकॉज दैट इज द स्टार्ट ऑफ करेक्शन। जब मैं ये आपसे पिछली दफा मैंने अर्ज किया था ना दैट हम सिर्फ अपने आप को ठीक कर सकते हैं, यानी दूसरों पर हमारा इन्फ्लुएंस ठीक हो जाए अगर हम अपने आप को ठीक करेंगे। तो अपने आप को ठीक करने में भी जो सबसे पहली चीज है वो ये जानना है कि ये कुछ गलत हो रहा है। अगर ये जानते ही नहीं है कि कुछ गलत हो रहा है तो फिर ठीक क्या करेंगे? तो इससे अगली चीजें हैं फिर कि अगर आप मिसाल के तौर पर इस पर काम करना चाहते हैं तो हाउ कैन वी स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी एन एफर्ट इन ब्रेकिंग योर हैबिट्स प्राइमरीली, ठीक है जी। हैबिट्स को तोड़ना, ये जो हमारा दिमाग है ना जी, बड़ी कमाल की चीज है, लेकिन इसके अंदर एक इट्स अ वेरी लेजी इंस्ट्रूमेंट। डू यू नो दिस, योर ब्रेन डज नॉट लाइक यू टू डू एनीथिंग डिफरेंट फ्रॉम वॉट यू आर यूज टू डूइंग। इस वजह से आप जैसे ही वो करेंगे ना, कभी गौर कीजिएगा कि आप जनरली एक ही रास्ते से घर से स्कूल आते हैं, एक ही रास्ते से। दैट इज इसकी ये वजह नहीं है कि और कोई रास्ता नहीं है, यू कैन टेक अनदर रूट, लेकिन इसकी वजह ये है कि यू नो दैट दिस इज द वे आई गो, और वो दिमाग आपको ये चाहता है कि बस अब इसी पे रहो, हिलो नहीं। और जैसे ही कोई आपको उस रास्ते में रुकावट आ जाए तो आपकी जो पहली फीलिंग डेवलप होती है वो परेशानी की होती है, हालांकि आपको पता है दूसरे रास्ते भी हैं, लेकिन वो परेशान हो जाते हैं इसलिए कि अब आपको एक नया रूट इख्तियार करना है, ठीक है। सो हैबिट्स क्या करती हैं, वो दिमाग को रेस्ट करने पर इजाज़त दे देती हैं, ठीक है। तो अगर किसी ने कुछ किया है तो आपने एक तरह से रिस्पॉन्स करने की अगर हैबिट बना ली है तो द ब्रेन कैन रेस्ट, बट इफ यू वॉन्ट टू चेंज दैट रिस्पॉन्स तो फिर अब आपको दिमाग को उठाना पड़ेगा, अच्छा फिर मैंने क्या करना है, यू नो, एंड दिस द ब्रेन डज नॉट लाइक, कहते हैं यार जो कर रहे हैं ना वही करी जा, दिस इज द वे द ब्रेन वर्क्स। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और इस पर अगर हमें मौका मिलेगा तो हम इसकी कुछ चीजें इस पर बात भी करेंगे इंशाल्लाह कि कैसे आप कॉन्शियस हो गए। आप अगर मेरे साथ ये शेयर करें इन लेटर प्रोग्राम्स कि ये प्रॉब्लम हो रही है, मिसाल के तौर पर मुझे इस तरह की सिचुएशन में गुस्सा चढ़ जाता है, या मैं इस तरह की सिचुएशन में स्ट्रेस में आ जाता हूँ, यू नो, वी कैन टॉक अबाउट दैट एज वेल। جی
سر, جیسا کہ معیار سے جو گری ہوئی بات ہے بلو دا بیلٹ جو ٹاک ہے, وہ بھی ہمارے کریکٹر ڈیولپمنٹ پہ بڑا اثر رکھتی ہے. اگر ہم اب ہماری سوسائٹی میں اگر آپ دیکھتے ہیں اکثر ایسے مثالیں ہیں جو لوگ بہت ہی فضول گری ہوئی بات کر دیتے ہیں کسی کے منہ پہ یا کچھ بھی کرتے ہیں, تو اس سے ہم اگر اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں اس سوسائٹی میں رہ کے, یا اگر ہمیں اس کی عادت ہے, تو ہاؤ کین وی اوور کم دس؟
اگر عادت ہے اور آپ یہ عادت توڑنا چاہتے ہیں, یہ سوال ہے آپ کا. یعنی دیکھیے وہی بات کہ آپ کا یہ احساس جو ہے کہ یہ میرے معیار کی بات نہیں ہے, پہلے تو یہ احساس ہونا چاہیے. اگر یہ احساس ہی نہیں ہے تو کریکشن کا آغاز ہی نہیں ہو سکتا. سب سے پہلے تو اس کو ریکگنائز کرنا ہے. سو بینگ کانشیس آف دا فیکٹ دیٹ دیر از سم تھنگ رانگ از دا فرسٹ اسٹیپ ان کریکشن, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. اب یہ بات کہ اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے, وہ اس کی کچھ ایکسرسائزز ہیں جی, جو اگر آپ مجھے شیئر کر سکیں تو مجھے بتائیے گا کہ یہ پرابلم ہے جس کو میں ٹھیک کرنا چاہتا ہوں. مثال کے طور پر یعنی آپ اپنی لینگویج کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. لینگویج سے میری مراد ہے کہ یو ڈونٹ وانٹ ٹو یوز سرٹن ورڈز. تو اس میں ایک بڑا اچھا کام جو چیز رول پلے کرے گی وہ یہ ہے کہ دیکھیے ایک چھوٹی سی چیز کی طرف میں توجہ دلاؤں, پھر اس سے بات سمجھ میں آ جائے گی. آپ نے کبھی غور کیا اپنے ہمارے گھروں کی, ہمارے اسکولوں کی ایک نارم ہے, وہ یہ کہ ہم جب ہمارا جب بڑا کوئی ہم سے سوال کرتا ہے تو سوچنے میں اگر آپ پڑ گئے تو اس کا مطلب آپ کو نہیں آتا ہے نا. یعنی لیٹ سے کسی ٹیچر نے پوچھا ہے کہ واٹ از 8 ملٹیپلائڈ بائی 7, ٹھیک ہے, اور جس نے ایک دم ہاتھ اٹھا دے گا. اچھا کچھ لوگ تو بول بھی دیں گے ہے نا, بول بھی دیں گے, ہاتھ بھی نہیں اٹھائیں گے. لیکن ایک آدمی جو تھوڑا سا سوچنے لگ پڑا ہے وہ سمجھنے نلائق ہے. اس سے ایک ویلیو ڈیولپ ہوتی ہے ہمارے اندر. وہ ویلیو یہ ہے کہ جب کچھ ہو تو ہمیں فوراً رسپونڈ کرنا چاہیے, ورنہ ویل بی کنسیڈرڈ ایز ان انٹیلیجنٹ. اور یہ حقیقت کے بالکل خلاف ہے. یعنی اگر آپ کا جواب فوراً آ رہا ہے اس کا مطلب ہے یو آر کوائٹ ان انٹیلیجنٹ, یو آر اونلی گیونگ دی آنسر وچ یو نو دیٹ دا ٹیچر وانٹس ٹو ہیئر. لیکن اگر آپ سوچ رہے ہیں, اگر آپ اپنی اس بارے میں کانشیس ہو گئے ہیں کہ میرے لیے اب کچھ الفاظ میں نے نہیں یوز کرنے اپنی زندگی میں, تو پھر اپنی رسپانسز کو تھوڑا سا ڈیلے کر دیں اور یہ سوچیں کہ میں جو اب بولنے لگا ہوں ول اٹ ہیو دا رائٹ افیکٹ, کیا وہ ٹھیک الفاظ بولنے لگا ہوں. اس کے نتیجے میں آپ یو نو یو ول فیل کہ تھوڑا سا آپ کو لوگ پریشان ہوں گے شروع میں, یار آپ تو اچھے خاصے انٹیلیجنٹ آدمی تھے, آپ پڑھ کے نہیں آتے ہیں. نہیں, اب آپ سوچ کے بات کرتے ہیں. انفارچونیٹلی ہماری انسٹیٹیوشنز میں اس چیز کی ترویج نہیں کی جاتی کہ ہم سوچ سمجھ کے بات کریں. یہ کی جاتی ہے کہ جلدی جواب دیں. جلدی جواب دینے کا مطلب ہے کہ سبق پڑھ کے آیا ہوا ہے, اور اگر ڈیلے ہو گیا ہے اور سوچ میں پڑ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ نہیں یہ تو غلط ہو گیا, باپ پڑھ کے نہیں آیا ہوا. سو بیکاز اٹ از اے میموری اورینٹیڈ اسٹڈی, جو ہم ایجوکیشن ہماری میموری اورینٹیڈ ہے نا, انڈرسٹینڈنگ اورینٹیڈ نہیں ہے, تو اس وجہ سے ہمیں یہ پرابلم ہوتی ہے. لیکن ونس یو بیکم کانشیس آف اٹ کہ ہم نے یہ چیزیں نہیں کرنی ہیں, دین یو کین ایکچولی ڈیلے یور رسپانس, سلیکٹ یور پرنسپل اینڈ سلیکٹ یور ورڈز. اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے, ہو سکتا ہے یہ, اور یہ شروع میں ڈیلے ہوگا, بعد میں نہیں ہوگا. وہی بات ہے, آپ کے برین کی جب ہیبٹ دوسری ورڈز بن جائیں گے تو اب وہ آٹومیٹکلی نکلیں گے. جی
سر, مائی کوشچن واز آن وٹ فیکٹرز ڈو پیپل جج آور کریکٹر آن آور فرسٹ میٹ. ہم پہلے ہی کسی سے ملتے تو کس بنا پہ ہی ہماری پہلی ملاقات میں ہی کوئی ہمیں جج کر لیتا ہے ہمارے کریکٹر کو؟
دیکھیے دوسرا کیا کرتا ہے, اس کو بہت امپورٹنس نہیں دینی چاہیے. سیریسلی وی کین ناٹ جج اندر پرسنز کیریکٹر, اینڈ ایٹ لیسٹ ناٹ امیجیٹلی. آئی مین یو کین بی اے ویری گڈ فیس ریڈر مے بی, آئی ایم ناٹ. You see, and I always feel that sometimes because I've lived, you know, a reasonably long life, I might start thinking that I'm a very good judge of face reading. I'm not. I know that I have read faces accurately and I've been very wrong in that as well. Ek aadmi jo hai jiske baare mein, I'll give you an example of that. You know, I've been doing these workshops since about what? More than 10 years now, 12 years. And one day what happened, I was at a place near Sialkot. Iska naam hai Sambdeyal. Sambdeyal mein tha main. Aur Sialkot, samajh nahi, Sialkot mein tha. Aur ek sahab baithe hue the, meri workshop ho rahi thi aur workshop ke andar, aap dekhe, hota kya hai ke classroom mein aap jab khade hain aur aap baat kar rahe hain, आप तो हैव यू एवर यू नो यू विटनेस दिस, आप लोग क्लास में आगे बैठते हैं पीछे बैठते हैं? हाँ पीछे बैठते हैं, दैट्स गुड. आगे बैठते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड. लेकिन अगर आप आगे बैठकर तवज्जो नहीं दे रहे तो फिर फौरन नोटिस में आ जाते हैं, है ना? यानी ये एक प्रॉब्लम है. तो जो पीछे बैठे ना वो रिलैक्स कर सकते हैं थोड़ा सा इधर उधर. तो ये साहब बिल्कुल आगे बैठे हुए थे. ही वॉज सिटिंग इन द फर्स्ट रो. एंड मज़े की बात ये कि ये बिल्कुल आगे बैठे हुए थे, ये मैं खड़ा हूँ समझ लें एक मिडल ऑफ द रूम, और वो उस एंड पे बैठे हुए थे. आई स्टिल कैन रिकॉल कि इस तरह लगी हुई थी, होती है ना जो जगह लेक्चर रूम में उस तरह से, तो वो एंड पे बैठे, उस तरफ एक खिड़की थी और वो कॉन्टिन्यूसली खिड़की के बाहर देख रहे थे. मतलब आई एम अ वेरी पैशनेट स्पीकर व्हेन आई यूज्ड टू डिलीवर दीज वर्कशॉप्स. And I was getting disturbed, seriously disturbed. Yaar, I mean, khuda ke liye, matlab, if you want to look outside, peeche hi baith jao kam az kam, matlab, aage to na baitho yaar. Mere se kuch der ke baad raha hi nahi gaya. Maine unse kaha ke, aap, if you're really interested going out, you know, you can go out. This is a voluntary thing, you know, you don't have to, you can't be forced to sit here. Agar aapka interest bahar jaane ka hai, to aap chale jayein. तो वो थोड़े से परेशान हो गए. वो कहते नहीं नहीं नहीं, मैं असल में आपकी बात सुनना चाह रहा हूँ सर, मेरा ये कान सुनता नहीं है, मैं सुन रहा हूँ. सी आई जज्ड रॉन्गली कि ये असल में तवज्जो नहीं दे रहा है. तो ये कैरेक्टर नहीं है, ये असल में हम जो कुछ जज कर सकते हैं ये असल में वो चीज़ें हैं जो अपेरेंट होती हैं, जो सामने आ रही होती हैं, और वो कई दफ़ा बड़ी डिसेप्टिव होती हैं, बहुत ज़्यादा डिसेप्टिव हो जाती हैं. उसके बारे में अपनी कम इल्मी और ह्यूमिलिटी के साथ मामला करना चाहिए. लेट देम जज, डजेंट मैटर, बिकॉज इफ़ यू आर वर्किंग ऑन योर कैरेक्टर द रिजल्ट्स आर गोइंग टू शो. मे बी नॉट इन अ डे, नॉट इन अ वीक, नॉट इन अ मंथ, मे बी इट विल टेक सम टाइम. योर थॉट्स आर गोइंग टू चेंज, यू विल बी अ डिफरेंट पर्सन. इट इज़ लाइक ग्रोइंग अ प्लांट. मैं जब ये करता हूँ ना जी वर्कशॉप्स वगैरह, तो अपनी वर्कशॉप, क्योंकि ये सारी की सारी जो मेरी वो वर्कशॉप्स होती हैं वो प्रोसेस ओरिएंटेड होती हैं. प्रोसेस ओरिएंटेड का मतलब है आपने अपनी मेहनत करते जाना है, बस छोड़ दें रिजल्ट्स क्या निकलते हैं, निकल आएंगे. तो प्रोसेस ओरिएंटेशन की जो सबसे अच्छी मिसाल है, जिस तरह मेरी पिछली दफा बात हुई, वो प्लांटेशन है. आप प्लांट्स लगाने में यही कर सकते हैं कि सही मौके पर सही जगह पर पानी दे दें, खाद डाल दें, इंसेक्टिसाइड डाल दें, यही कर सकते हैं. फल लगा नहीं सकते, यू कैन नॉट ग्रो फ्रूट्स. मैं पूछता हूँ अपने सेशंस में कि आप में से कोई ज़मींदार है, तो वो कहते हैं हाँ जी. क्या उगाते हैं? वो कहते हैं गंदम उगाते हैं. मैंने कहा वाकई आप उगाते हैं गंदम? उगा सकते हैं? किस तरह उगाते हैं? मतलब पौधे को खींच खींच के बाहर निकालते हैं कि चल उग? यू कैन डू एनीथिंग, ऑल यू कैन डू इज टू अडॉप्ट द प्रोसेस. इतना ही कर सकते हैं ना. And this is the, and it's exactly the same with real learning as well. ये है जो असल problem है. आपकी जो हकी, कभी खुद जान के अपने शौक से कुछ सीखा है आपने? Think about it. आप में से किसी ने टेनिस खेलनी की या बैडमिंटन या कुछ भी कोई चीज, कोई गेम खेलनी सीखी है खुद शौक से?
नहीं, लेकिन एक और habit सीखी है शौक से.
वो क्या सीखी?
सर, writing.
Writing, okay. Now, what I can tell you, आप कंप्यूटर पे लिखती हैं?
No sir.
Okay.
Handwriting.
ہینڈ
رائٹنگ
آرٹیکل رائٹنگ
ہاں ٹھیک بریلینٹ بریلینٹ آپ ایک چیز دیکھیے گا کہ آپ اپنی یہ پوری چیزیں جو ہے نا جو لکھتے جا رہی ہیں ان کو سیف رکھیں ٹھیک ہے اینڈ دین آفٹر اے ایئر لک ایٹ یور فرسٹ آرٹیکل دیٹ یو روٹ اینڈ یو ول سی دیر از اے ٹریمینڈ اینڈ یو ڈونٹ ایون نو اباؤٹ اٹ بٹ جسٹ بیکاز یو آر پریکٹسنگ اینڈ گوئنگ تھرو دا پروسیس دا ریزلٹس آر چینجنگ ٹھیک ہے آپ میں سے کسی نے باڈی بلڈنگ کی طرف بھی کوئی شوق بنا کبھی بنا کی چھوڑ دی میری طرح کہیں آپ یو نو وہ میں کیا دس دن وہ ڈنڈ شنڈ نکالے اس کا یار کچھ ہوا ہی نہیں تو کی فائدہ وہ اس لیے کیونکہ ریزلٹ اورینٹیڈ ہو گئے اب اگر جس دن آپ پروسیس اورینٹیڈ ہو جائیں کہ میں نے یہ کرنا ہی ہے دس از گوئنگ ٹو بی مائی دس از واٹ آئی ول ڈو تو آپ کے ریزلٹ بھی نکل آئیں گے اصل میں لرننگ از لائک اوکے لائک فار انسٹنس لرننگ ٹو بیٹ اف یو ہیو نیور ہیلڈ اے بیٹ ان یور ہینڈ اینڈ فیسڈ اے بولر آپ جتنی مرضی کتابیں پڑھ لیں بیٹنگ نہیں آئے گی آپ ٹنڈولکر کی لکھی ہوئی کتابیں بھی پڑھ لیں تب بھی نہیں آئے گی جو مرضی کر لیں یو ول ہیو ٹو ڈو اٹ یو ول ہیو ٹو گو تھرو دا پروسیس یہ پروسیس اختیار کریں گے تو ہوگا اور یہی معاملہ اصل میں کیریکٹر کا ہے کیریکٹر ڈیولپ آپ جب خود کانشیس ہو جاتے ہیں دوسروں کے بارے میں بات نہیں کر رہا جی خود کانشیس ہو جاتے ہیں تو آپ یو اسٹارٹ دا پروسیس اینڈ اٹ ول اسٹارٹ شوئنگ ریزلٹس یہ جو انفارچونیٹ بات ہوئی بہت زیادہ انفارچونیٹ بات ہوئی وہ یہ ہے کہ جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا تھا نا جی 75 سال لاسٹ 75 to 80 years میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ اصل میں آپ کو بظاہر اچھے بنانے کی کتابیں ہیں یہ کیسے حاصل ہو سکتا ہے ہاؤ ٹو ڈو گیٹ دس ہاؤ ٹو گیٹ دیٹ یو نو ہاؤ ٹو گیٹ اے گڈ جاب یہ سب چیزیں اندر سے کیسا ہونا ہے مجھے ٹھیک ہے جی تو پھر ہم انشاءاللہ گفتگو کو جاری رکھتے ہیں جی انشاءاللہ